थिएटर की लॉबी में आर्चर की मुलाकात अपने दोस्त नेड विंसेंट से हुई। जेनी के बुद्धिमान लोगों में बस उसी से वो क्लब की आम गपशप से कुछ गहरी बात करना पसंद करता था। उसने थिएटर के उस पार विंसेंट की झुकी घिसी पीठ देखी थी और ये भी कि उसकी आंखें एक बार ब्यूफर्ट बॉक्स की ओर मुड़ी। दोनों ने हाथ मिलाया। विंसेंट ने नुक्कड़ के छोटे जर्मन भोजनालय में बियर पीने का न्योता दिया। वहाँ की बातचीत के मूड में न होने से आर्चर ने घर पर काम का बहाना कर मना कर दिया। तो विंसेंट बोला, अरे मुझे भी काम है, तो मैं भी मेहनती कारीगर बन जाऊंगा। दोनों साथ चलने लगे। थोड़ी देर में विंसेंट बोला, सुनो, मुझे असल में तुम्हारे शानदार बॉक्स वाली सांवली महिला का नाम चाहिए। वो ब्यूफर्ट परिवार के साथ थी ना, वही जिस पर तुम्हारा दोस्त लेफर्ट्स फिदा है। आर्चर को न जाने क्यों हल्की झुंझलाहट हुई। नेड विंसेंट को एलेन ओलेंस्का का नाम क्यों चाहिए और लेफर्ट्स के साथ उसका नाम जोड़ना क्यों? ऐसी उत्सुकता विंसेंट का स्वभाव नहीं थी, पर फिर याद आया, वो पत्रकार था, इंटरव्यू के लिए तो नहीं, उसने हंसकर पूछा। नहीं, अखबार के लिए नहीं, बस अपने लिए, विंसेंट ने कहा। वो मेरी पड़ोसन है, ऐसी सुंदरता के लिए अजीब मोहल्ला, और मेरे छोटे बेटे पर बेहद मेहरबान रही। बिल्ली के बच्चे के पीछे भागते वो उसके आंगन में गिरा और बुरी तरह कट गया। वो नंगे सिर दौड़ी आई, बच्चा गोद में, घुटने पर पट्टी एकदम सही बंधी, और वो इतनी सुंदर थी कि मेरी पत्नी हक्की बक्की रह गई, नाम पूछना ही भूल गई। आर्चर का दिल गर्म हो उठा। कहानी में असाधारण कुछ नहीं था, पड़ोसी के बच्चे के लिए कोई भी औरत यही करती, पर उसे लगा ये बिल्कुल एलन जैसा था, नंगे सिर दौड़ना, बच्चा गोद में उठाना और बेचारी श्रीमती विंसेंट को इतना चकित कर देना कि वो नाम पूछना ही भूल जाए। वे काउंटेस ओलेंस्का है, बूढ़ी श्रीमती मिंगट की पोती।
अरे वाह काउंटेस, नेड विंसेंट ने सीटी बजाई। मुझे पता नहीं था कि काउंटेस इतनी अच्छी पड़ोसन होती हैं। मिंगट परिवार तो ऐसा नहीं है, मौका मिले तो वे भी ऐसे ही होते। अच्छा खैर, ये दोनों की वही पुरानी कभी ना खत्म होने वाली बहस थी। बुद्धिमान लोग फैशन वालों से मिलने से क्यों कतराते हैं? दोनों जानते थे कि इसे खींचना बेकार है। मैं सोचता हूँ, विंसेंट ने रुक कर कहा, एक काउंटेस हमारे मोहल्ले में कैसे निभा लेती है, उसे परवाह नहीं कि वो कहाँ रहती है, हमारे समाज की छोटी तख्तियों की भी नहीं। आर्चर ने कहा, कल्पना के बनाए उसके चित्र पर उसे गुप्त गर्व था। हूँ, शायद वो बड़ी जगहों में रह चुकी है, दूसरे ने बुदबुदाया। खैर, मेरा नुक्कड़ आ गया, और वो अपनी बेढंगी चाल से ब्रॉडवे पार कर गया।
और आर्चर उसे जाते देखता रहा, आखिरी शब्दों पर सोचता हुआ। नेड विंसेंट में ऐसी पैनी नजर की चमक थी, यही उसकी सबसे दिलचस्प बात थी, और इसी से आर्चर हमेशा सोचता, जब ये सब उसके पास था तो उसने उस उम्र में हार को इतनी शांति से क्यों मान लिया, जिस उम्र में ज्यादातर मर्द अभी जूझ रहे होते हैं। आर्चर जानता था कि विंसेंट की पत्नी और एक बेटा है, पर उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। दोनों सेंचुरी क्लब में मिलते या ऐसी जगहों पर जहां पत्रकार और थिएटर के लोग आते जाते, जैसे वही भोजनालय जिसकी बियर ठुकराई गई थी। विंसेंट ने जताया था कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, ये सच हो सकता था, या इसका मतलब बस इतना कि बेचारी में मिलनसारी का हुनर नहीं था, या शाम की पोशाक नहीं थी, या दोनों नहीं थे।
विंसेंट खुद सामाजिक रीति रिवाजों से जान से नफरत करता था। आर्चर, जो शाम को कपड़े इसलिए बदलता था कि ये ज्यादा साफ और आरामदेह लगता था, और जिसने कभी रुककर ये नहीं सोचा था कि सफाई और आराम तंग बजट की दो सबसे महंगी चीजें हैं, इस रवैये को उबाऊ बोहिमियन दिखावा मानता था, और ये दिखावा उसे हमेशा अमीरों के पक्ष में जाता लगता। वे न कपड़े बदलने की बात करते हैं, न नौकरों की गिनती की, इसलिए ज्यादा सादे और कम बनावटी दिखते हैं। फिर भी विंसेंट उसे हमेशा ताजा कर देता। पत्रकार का दुबला दाढ़ी वाला चेहरा और उदास आंखें दिखते ही आर्चर उसे कोने से खींच निकालता और लंबी बातचीत में ले जाता।
विंसेंट अपनी मर्जी से पत्रकार नहीं बना था, वो खालिस साहित्य का आदमी था। ऐसे संसार में बेवक्त जन्मा जिसे साहित्य की जरूरत न थी। उसने छोटे नफीस निबंधों की एक किताब छापी थी, 120 बिकी, 30 भेंट गईं, बाकी करार के मुताबिक प्रकाशक ने नष्ट कर दी ताकि बिकाऊ माल के लिए जगह बने।
फिर वो राह छोड़कर उसने महिलाओं की एक साप्ताहिक पत्रिका में सहायक संपादक की नौकरी कर ली, जहां फैशन चित्र और कागज के नमूने न्यू इंग्लैंड की भावुक कहानियों और बिना शराब के पेयों के विज्ञापनों संग छपते थे। घर का चूल्हा पत्रिका का यही नाम था। उस पर विंसेंट के व्यंग्य कभी चुकते न थे, पर हंसी के नीचे उस नौजवान की बंजर कड़वाहट छिपी थी जिसने कोशिश की और हार मानी। उसकी बातचीत से आर्चर हमेशा अपनी जिंदगी नापने लगता और पाता कि उसमें कितना कम है, पर विंसेंट की जिंदगी में और भी कम था और साझा बौद्धिक रुचियां मुलाकातों को स्वाद देती थीं। फिर भी विचारों का लेन देन अक्सर फीके शौकिया शगल में सिमट जाता था।
सच ये है कि जिंदगी हम दोनों में किसी को रास नहीं आती, विंसेंट ने एक बार कहा था। मैं तो खत्म हूँ, मेरी मरम्मत नहीं हो सकती। मैं बस वही माल बना सकता हूँ जिसकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं और मेरे जीते जी होगी भी नहीं। पर तुम आजाद हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम दुनिया से क्यों नहीं जुड़ते? रास्ता एक ही है, राजनीति में उतरना। आर्चर ने सिर पीछे फेंक कर ठहाका लगाया। एक झलक में विंसेंट जैसों और उसके अपने वर्ग के बीच की अलंघ्य खाई दिख जाती थी। फैशनेबल हलकों में हर कोई जानता था कि अमेरिका में कोई सज्जन राजनीति में नहीं जा सकता, पर ये उससे कहा नहीं जा सकता था। सो आर्चर ने टालकर कहा, अमेरिकी राजनीति में ईमानदार आदमियों का हाल देखो, वे हमें चाहते ही नहीं। कौन वे? तुम सब मिलकर खुद वे क्यों नहीं बन जाते? आर्चर की हंसी होंठों पर ठहर कर हल्की हिकारत भरी मुस्कान बन गई। बहस खींचना बेकार था। उन गिने चुने सज्जनों का दुखद हश्र सबको पता था जिन्होंने न्यूयॉर्क की नगर या राज्य राजनीति में अपनी साफ कमीज दांव पर लगाई। वो जमाना गुजर चुका था, देश दलों के सरगनाओं और परदेशियों के हाथ था और भले लोग खेल या संस्कृति में सिमट गए थे। संस्कृति, हाँ, काश वो हमारे पास होती।
पर यहाँ वहाँ बस कुछ मरियल पौधे बचे हैं, देखभाल और कलम के अभाव में मरते हुए, उस पुराने यूरोपीय बाग के आखिरी अवशेष जो तुम्हारे परदादा लाए थे। पर तुम लोग एक दयनीय छोटा सा अल्पसंख्यक समूह हो, न कोई केंद्र, न होड़, न दर्शक। तुम उजड़े घर की दीवार पर टंगी उस तस्वीर जैसे हो, एक सज्जन का चित्र। जब तक तुम आस्तीने चढ़ाकर कीचड़ में नहीं उतरोगे, तुम में से कोई कुछ नहीं बन पाएगा, या फिर देश छोड़कर चले जाओ। हे भगवान, काश मैं जा पाता। आर्चर ने मन में कंधे उचकाए और बात फिर किताबों पर ले आया। वहाँ विंसेंट डामाडोल ही सही, हमेशा दिलचस्प था। देश छोड़ना, मानो कोई सज्जन अपना देश छोड़ सकता हो, ये हो नहीं सकता था। जैसे आस्तीने चढ़ाकर कीचड़ में उतरना नहीं, सज्जन बस घर बैठता और दूर रहता। पर ये किसी विंसेंट को समझाया नहीं जा सकता था और इसीलिए साहित्य क्लबों और विदेशी भोजनालयों वाला न्यूयॉर्क पहले झटके में बहुरूप दर्शक सा लगकर भी अंत में पांचवें एवेन्यू की सजी दुनिया से भी ज्यादा एक रस नमूने का छोटा डिब्बा निकलता था। अगली सुबह आर्चर ने पीले गुलाबों के लिए फिर सारा शहर छान मारा, बेकार,
और खाली हाथ लौटा। इस कारण वो दफ्तर देर से पहुंचा और ये देखकर कि उसकी देरी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी की सजी संवरी निरर्थकता पर उसे अचानक गुस्सा आ गया। वो इस समय सेंट ऑगस्टीन के तट पर मे वेलेंड के पास क्यों नहीं था?
उसकी दिखावटी पेशेवर मेहनत से कोई धोखा नहीं खाता था। मिस्टर लेटर ब्लेयर जैसे पुराने ढंग के दफ्तरों में, जिनका मुख्य काम बड़ी जायदादों की देखरेख और सुरक्षित निवेश था, हमेशा दो तीन ऐसे अमीर महत्वाकांक्षा रहित नौजवान होते थे जो रोज कुछ घंटे अपनी मेज पर बैठकर छोटे मोटे काम निपटाते या बस अखबार पढ़ते। ये जरूरी माना जाता था कि उनके पास कोई काम हो, पर सीधे सीधे पैसा कमाना अब भी ओछा समझा जाता था और वकालत एक स्वतंत्र पेशा होने के नाते व्यापार से ज्यादा कुलीन गिनी जाती थी। पर इनमें से कोई भी पेशे में सचमुच आगे बढ़ने की न उम्मीद रखता था न इच्छा, और उनमें से कई पर औपचारिक खोखलेपन की हरी काई साफ दिखने लगी थी। आर्चर सिहर उठा, शायद वही काई उस पर भी फैल रही थी।
बेशक उसके और शौक और दिलचस्पियां थी। छुट्टियों में वो यूरोप घूमता, मैं जिन बुद्धिमान लोगों की बात करती उनसे मिलता जुलता, और जैसा उसने मादाम ओलेंस्का से कुछ उदासी के साथ कहा था, पीछे न रह जाने की कोशिश करता। पर शादी के बाद जिंदगी की उस तंग पट्टी का क्या होगा जिस पर उसके असली अनुभव घटते थे।
उसने ऐसे कई नौजवान देखे थे जिन्होंने उसकी तरह शायद कम गर्मजोशी से सपने देखे और धीरे धीरे बड़ों की शांत समृद्ध दिनचर्या में डूब गए। दफ्तर से उसने एक संदेश वाहक के हाथ मादाम ओलेंस्का को रुक्का भेजा,
पूछा कि क्या वो दोपहर बाद मिलने आ सकता है और आग्रह किया कि जवाब क्लब में उसका इंतजार करे, पर क्लब में कुछ नहीं मिला। अगले दिन भी कोई जवाब नहीं आया। इस अनपेक्षित चुप्पी ने उसे हद से ज्यादा दुखाया और अगली सुबह एक फूल वाले की खिड़की में पीले गुलाबों का शानदार गुच्छा देखकर भी वो आगे बढ़ गया और उन्हें वहीं छोड़ आया। तीसरी सुबह जाकर डाक से काउंटेस ओलेंस्का की एक पंक्ति आई। उसके अचरज की बात वो स्क्वाइटर क्लिफ से आई थी, जहां ड्यूक को जहाज पर चढ़ाते ही वैन डर लाइडेन दंपति लौट गए थे। मैं भाग आई, चिट्ठी एकाएक शुरू होती थी।
शुरुआत की रस्मी पंक्ति के बिना आपसे थिएटर में मिलने के अगले ही दिन इन भले दोस्तों ने मुझे रख लिया। मैं सोचने के लिए शांति चाहती थी। आप ठीक कहते थे, ये लोग मुझ पर कितने मेहरबान हैं। यहाँ मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। काश आप भी हमारे साथ होते। चिट्ठी रिवाज के सादर पर खत्म होती थी। लौटने की तारीख का जिक्र न था। चिट्ठी के लहजे ने आर्चर को चौंका दिया।
मादम ओलेंस्का किससे भाग रही थी
और उन्हें सुरक्षित लगने की जरूरत क्यों थी? पहले मन में विदेश का कोई काला खतरा उभरा, फिर याद आया कि उनकी चिट्ठियों की शैली से वो अनजान था। शायद उनमें रंगीन अतिशयोक्ति हो। औरतें हमेशा बढ़ा चढ़ा कर कहती हैं और उनकी अंग्रेजी अधूरी थी। वे अक्सर मानो फ्रेंच से अनुवाद करती बोलती थी, जे मे स्वीस एवा दे। यो देखे तो इसका मतलब बस ये हो सकता था कि वे उबाऊ दावतों से बचना चाहती थी। ये संभव भी था, वो उन्हें मौजी पल के सुख से जल्द उबने वाली मानता था। ये सोच उसे मजेदार लगी कि वैन डर लाइडेन दंपति उन्हें दूसरी बार स्क्वाइटर क्लिफ ले गए
और इस बार अनिश्चित काल के लिए।
स्क्वाइटर क्लिफ के दरवाजे मेहमानों के लिए बिरले ही खुलते थे और चुने हुए थोड़े से लोगों को बख्शी जाने वाली सबसे बड़ी मेहरबानी एक ठंडा सप्ताहांत थी। पर पिछली पेरिस यात्रा में आर्चर ने लाबिश की वो लाजवाब कॉमेडी देखी थी, मैस्यू पेरिशों की यात्रा, और उसे याद था कि पेरिशों उस नौजवान से कैसी जिद्दी अथक ममता से चिपके रहे जिसे उन्होंने हिम्मत से निकाला था। वैन डर लाइडेन दंपति ने भी मादाम ओलेंस्का को लगभग उतने ही बर्फीले भाग्य से बचाया था, और यद्यपि उनमें दिलचस्पी की और भी कई वजहें थीं, आर्चर जानता था कि सबके नीचे उन्हें बचाते रहने का वही नरम अटल इरादा था।
उन्हें दूर जानकर उसे साफ निराशा हुई और लगभग तुरंत याद आया कि कल ही उसने रेजी चिवर्स परिवार का न्योता ठुकराया था। अगले रविवार को हडसन किनारे उनके घर पर, जो स्क्वाइटर क्लिफ से कुछ ही मील नीचे था, हाई बैंक की शोरगुल भरी मस्तियों से बर्फ गाड़ी, बर्फ नौका, बर्फ में लंबी सैरें और वही हल्का फुल्का इश्क और घिसे पिटे मजाक, वो कब का ऊब चुका था। लंदन के किताब वाले से नई किताबों का बक्सा अभी अभी आया था और उसने अपने खजाने के साथ घर पर एक शांत रविवार की कल्पना की थी, पर वो सीधा क्लब के लेखन कक्ष में गया।
जल्दी से एक तार लिखा और नौकर से कहा कि तुरंत भेज आए। वो जानता था कि श्रीमती रेजी मेहमानों के अचानक इरादा बदलने का बुरा नहीं मानती और उनके लचीले घर में हमेशा एक कमरा खाली रहता है।